युग परिवर्तन और ज्ञान यज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य के शरीर में दो चीज है, एक उसकी रचना और उसकी काया। काया का खाने पीने से संबंध है, सोने उठने से संबंध है और इंद्रिय भोगों से संबंध है। बस पशु का छोटा सा जीवन जिस तरीके से काया के ऊपर टिका रहता है, उसी तरीके से अगर मनुष्य का जीवन भी टिका रहे, यही मानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का कोई महत्व न बन सका और मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य पूरा न हो सका। खाया और पखाना फिरा, खाया और टट्टी फिरी, बच्चे पैदा किए और बच्चे पैदा करने के जंजाल में फंसे रहे, ये कोई जीवन है क्या? ये तो कोई जीवन नहीं, ये तो बहुत ही घटिया और पशुओं जैसा नार के जीवन है। मनुष्य के बाद जो कुछ विशेषता और महत्ता है, किसी की वो स्वयं उन्नति कर जाता है, अपने समाज को ऊंचा उठा ले जाता है, वो उसकी अंतरंग की विचारधारा, जिसको हम चेतना कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, विचारणा कहते हैं, वही एक चीज है जो मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है, महान बना सकती है, शांति दे सकती है और समाज के लिए उपयोगी बना सकती है। चेतना मनुष्य की, इसको विचारणा हम कह सकते हैं। विचार करने का क्रम आदमी का किसका कैसा है, बस असल में वही उसका स्वरूप। छोटा आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से नहीं होता, बल्कि जिस आदमी की मानसिक स्तर की ऊंचाई कम है, जो आदमी ही ऊंचे सिद्धांत और ऊंचे आदर्शों को नहीं सोच सकता, और जो आदमी सिर्फ पेट तक और अपने संतान पैदा करने तक सीमा में रहता है, वो छोटा आदमी है। 1 इंच का अगर उसको आदमी कहे तो कोई अचंभे की बात नहीं, उसको मेंढक और चूहे की तुलना करें तो कोई अचंभे की बात नहीं, कीड़े मकोड़ों में उसकी गिनती करें तो कुछ हर्ज की बात नहीं। मनुष्य का स्तर और मनुष्य का गौरव उसके ऊंचे विचारों पर टिका हुआ है, और ऊंचे विचार जब कभी भी मनुष्य के होते हैं तो उसका जीवन देवत्व जैसा दिखाई पड़ता है। गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, गरीबी से क्या बनता है आदमी का, क्या बिगड़ता है? अमीर ही में गेहूं की रोटी खा सकता है, गरीबी मक्का की रोटी खा सकता है, क्या 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 बन गई बात? अमीर आदमी रेशमी कपड़े पहन सकता है और गरीब आदमी मोटे छोटे कपड़े पहन सकता है, और कौन कौन खास बात है? आदमी के स्तर पर कुछ फर्क नहीं आता, एक काली कौड़ी के बराबर भी। मनुष्य का स्तर जब आदमी का बढ़ता है तो उसकी विचार करने के क्रम और सोचने के तरीके के ऊपर टिका रहता है। मनुष्य की महानता भी उसी पर टिकी हुई है, मनुष्य की शांति भी उसी पर टिकी हुई है, गौरव भी उसी पर टिका हुआ है, परलोक भी उसी पर टिका हुआ है और समाज के लिए उपयोगिता अनुकूलता भी उसी पर टिकी हुई है। इसीलिए हमको सारा ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि आदमी के विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका बदल जाए। पिछले दिनों जब हमारे देश के नागरिकों का विचारणा का स्तर बहुत ऊंचा था, और शिक्षा के माध्यम से या अन्य वातावरणों के माध्यम से और धर्म और अध्यात्म के माध्यम से ये प्रश्न प्रयत्न किया जाता था कि आदमी ऊंचे किस्म का सोचने वाला हो और उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं नीच श्रेणी के जानवरों जैसी, नौकर के महापुरुषों जैसी हो। जब ये प्रयास किया जाता था तब अपना देश कितना ऊंचा था, देवता गिने जाते थे यहाँ के नागरिक, और ये राष्ट्र सारी दुनिया के लोगों की आंखों में स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ा करता था। इस महानता और विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा खड़ा किया गया है, खड़ा किया गया है, धर्म अध्यात्म खड़ा किया गया है। मूल नहीं धर्म अध्यात्म, ये मूलतः मनुष्य के विचार करने की ऊंचाई, उस ऊंचाई को कायम रखने के लिए एक बाड़ बनाई गई है, एक खांचा खड़ा किया गया है, एक ढांचा ढाला गया है ताकि आदमियों के विचार करने की ऊंचाई बनी रह सके। धर्म यही है, अध्यात्म यही है और ईश्वर भी। ईश्वर के बारे में जितना ज्यादा लिखा गया और कहा गया है, मैंने बारीकी से देखा और ये सोचा कि पूजा पाठ से लेकर के और ईश्वर की चर्चा और लीला कहने सबका क्या प्रयोजन है, मुझे एक ही प्रयोजन दिखाई पड़ा। ईश्वर तो एक परब्रह्म अपार शक्ति है, वो एक नियामक शक्ति है और आदमी के काम को देखती रहती है और आदमी की चाल चलन आदमी के विचार के अनुसार से फल देती रहती है। उस आदमी किसी की प्रशंसा से क्या मतलब, निंदा से क्या मतलब, पूजा से क्या मतलब, गाली देने से क्या मतलब। लेकिन जब मैंने ये विचार किया कि पूजा पाठ से लेकर के धर्म अध्यात्म तक का सारा खांचा और ढांचा किस वजह से खड़ा किया गया, मतलब क्या है, उसके मतलब सिर्फ एक है, दूसरा कुछ मतलब नहीं। कि इन सारे के सारे कलेवरों के बंधनों में जकड़ा हुआ मनुष्य ऊंचे किस्म के विचार करना सीखे और आदर्शवादी विचारों को अपने मन और अंतरंग में स्थापित किए रह सके। ये मनुष्य की महानतम सेवा है और मनुष्य के जीवन की महानतम सफलता है कि उसके मन में श्रेष्ठ किस्म के विचार रहते हों और इस तरह के विचार रहते हों जो उनको व्यक्तिगत जीवन को पवित्र बनाते हैं और जो उसके व्यक्तिगत जीवन के दोष और दुर्गुणों को समाधान करते हैं और इस तरह के विचार जो मनुष्य को उदार बनाते हैं और जो मनुष्य की स्वार्थपरता और संकीर्णता के जाल और जंजाल से निकालते हैं। वो विचार जो मनुष्य की परिधि को सीमा को अपने शरीर से आगे बढ़ाते हैं, अपने कुटुंब से आगे बढ़ाते हैं और अपने बच्चों से आगे बढ़ाते हैं, बल इतना विशाल बना देते हैं जिससे सारे समाज का अंग हो जाता है और समाज सारे समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है और सारे समाज की सुविधा को अपनी सुविधा समझता है और सारे समाज के कष्टों को अपनी कष्ट समझता है और सारे समाज की सेवा को अपनी सेवा समझता है। जब इतना ऊंचा स्तर मनुष्य का हो जाए तो समझना चाहिए इसके पास धर्म की मान्यता आ गई, अध्यात्मता की मान्यता आ गई और ईश्वर की भक्ति आ गई। ये सारे का सारा जो कुछ भी हमारा दार्शनिक खांचा खड़ा हुआ है इसी आधार पर खड़ा हुआ है और ये स्तर अगर मनुष्य का बना रहा तो जो कुछ भी आदमी काम करेगा उसी में शान उत्पन्न हो जाएगी, उसी में सुख और सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। ईमानदार आदमी और त्यागार्थ करेगा तो उस त्याग से सारी जनता को बहुत लाभ होगा और आदमी के वक्त बच जाएगा और उस त्याग से चीजें खरीदने वालों का को बहुत संतोष होगा और जो भी अच्छी चीज उसने चाही थी खरीदी थी मिल जाएगी तो उसको एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास की भाव पड़ेगा। व्यापार हो तो क्या, अध्यापन हो तो क्या, मजदूरी हो तो क्या, कोई भी काम क्यों हो अगर मनुष्य ऊंचे दृष्टिकोण से करे अच्छे दृष्टिकोण से करे तो वो छोटा सा काम भी समाज के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, व्यक्ति की शान और गौरव को ऊंचा उठा सकता है। हर आदमी ये कोशिश करेगा कि मेरा काम अच्छे किस्म का हो और मेरी इज्जत उस अच्छे काम के साथ जुड़ी हुई हो। पैसा कम मिलता हो कि ज्यादा, लोग इस बात की सराहना करें कि किसी आदमी ने इसको बड़े मनोयोग और बड़ी दिलचस्पी बड़ी मेहनत के साथ किया है, फिर उसकी इज्जत और आबरू लोगों की आंख में भी बढ़े और अपनी आंख में भी अपने आप को ये मालूम पड़े कि हम ईमानदार शरीफ और नेक और कट्टर प्राण और वचन के पावन है। आदमी की ऊंचाई इसी बात पर टिकी हुई है और ऊंचाई को कायम रखने के लिए, विवेकशीलता को कायम रखने के लिए इस तरह के विचारों की आवश्यकता है जो मनुष्य को ऐसा ऊंचा उठाएं। दुर्भाग्य की हमारे बात कि हमारे पास विचार करने के जितने भी क्रम और साधन थे वो सारे के सारे अस्त व्यस्त और भ्रष्ट हो। साहित्य को देखा ना, साहित्य की दुकान पर जब हम जाते हैं और प्रेस में जो कूड़ा कबाड़ा छपते हुए देखते हैं और पत्र पत्रिकाएं जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, जी आता है कि इनको जला दिया जाए या अपना सिर फोड़ दिया जाए या अपनी आंखें फोड़ ली जाए। ये कोई साहित्य है क्या जो आदमी को अधःपतन की ओर ले जाता है, गिरावट की ओर ले जाता है? जो कुछ भी हम देखते हैं ज्ञान वर्षण का सामान, कला को देखते हैं, दूसरी चीजों को देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो नसीहतें दी जाती थी, जो शिक्षा दी जाती थी, वो भी ऐसे गंदे और फोहड़ किस्म के हैं कि जी आता है कि इनके धर्म और पूजा पाठ की और इन कथा पुराणों की किताबों को इकट्ठा करके इनमें दिया सड़ी लगा दी जाए, इनको जब्त कर दिया। भागवत से लेकर के नया कौन कौन विभूजी किताबें हैं कि जिनमें नया क्या कूड़ा कबाड़ा भर के रख दिया है, जो आदमी को ऊंचा उठाने की अपेक्षा और नीचा गिराती है और आदमी के चरित्र को और भी बदनाम करती है और आदमी को दिशा प्रेरणा देती है और घटिया किस्म का बनाती है। सारे की सारे दिशा में हम ये देखते हैं कि मनुष्य की अकल और मनुष्य की समझ और ऊंचाई को नीचा गिराने के लिए नया क्या से क्या चारों ओर से कबाड़ा इकट्ठा किया गया है कि आदमी घटिया ही होता हुआ चला जाता है। आदमी को घटिया बनाने के लिए उन साधनों की जरूरत है जो कि मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाते हो, ऊंचाई लाते हो, श्रेष्ठता लाते हो, शान लाते हो, इज्जत की भावना लाते हो। इस तरह का सारे का सारा कलेवर और खाचा खड़ा किया जाना चाहिए जिससे कि आदमी की विचार करने की शैली कुछ ऊंची उठे, श्रेष्ठ बने। आदमी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो अपनी राजनीति ठीक हो जाएगी और श्रेष्ठ नागरिक बनेगा अपना व्यापार सही हो जाएगा और श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और वरिष्ठ नागरिक आदमी बनेगा तो अपने कुटुंब और परिवार में बड़े प्यार और इज्जत के साथ शान के साथ रहेगा और आदमी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो उसके बालक नया कैसे अच्छे हो जाएंगे और श्रेष्ठ नागरिक होगा तो उसके पैसे की आमदनी जो कुछ भी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल होगा। व्यक्ति अपने आप में स्वर्ग में रहता हुआ अनुभव करेगा और सारे समाज में शांति आएगी अगर व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो जाए तब। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा काम मानव जाति की सेवा का यह है कि आदमी के विचार करने की शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए बेहतरीन के ढंग के और विचार योजनाबद्ध ढंग से काम किए जाए। निर्माण योजना यही करती हुई चली आ रही है। उसका पहला कदम यह है कि मनुष्य की सोचने की शैली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। पिछले 1000 वर्ष ऐसे भयंकर समय गया है, इसमें सामंतवाद से लेकर के पंडावाद तक हमारे धर्म के ऊपर पंडावाद छाया रहा। उसने ये कोशिश की कि आदमी को बौद्धिक दृष्टि से गुलाम बना दिया जाए, ताकि उसके चंगुल में फंसे हुए लोग, जिसको चेले कहते हैं, भगत कहते हैं, धर्म प्रेमी कहते हैं, इनकी बुरी तरीके से हजामत बनाई जाती है, रह सके और उल्लू बनाया जा सके। बौद्धिक क्षेत्र में एक और हमारा पंडावाद हावी रहा, जिससे कि मनुष्य की कोई सेवा नहीं की। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर आदमी को राई भर भी नहीं उठाया गया, बल्कि सही बात यह है कि और भी इमोरल और भी अनैतिक बना दिया गया और आदमी मूर्तावादी और अंधविश्वासी बना दिया गया। पंडावाद के द्वारा समाज की बहुत हानि हुई है। इसी प्रकार जैसे पंडावाद के द्वारा विचार के क्षेत्र में हानि हुई है, उस तरीके से राजसत्ता जिन लोगों के हाथ में रही, उनको हम सामंत कहते हैं, उनको हम राजा कहते हैं, उनको हम डाकू कहते हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपने महल और अपनी अपनी अय्याशी और अपनी विलासिता के लिए शोषण समाज का किया और शोषण समाज का किया और बराबर ये कोशिश की कहीं ऐसा न हो जाए कि विचारशीलता फैल जाए और लोगों में अनिति के विरुद्ध बगावत की भाव पैदा हो जाए, न्याय की भावना की बात हो जाए, फिर हमारा क्यों करेंगे ये लोग समर्थन। यही बात पंडावाद ने भी कोशिश की कि लोग समझदार न हो नहीं पाए, समझदार हो जाएंगे तो हमारे चंगुल हमारे शिकार हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और यही बात सामंतवाद ने भी की कोशिश की कि आदमी को घटिया किस्म से विचार करना सिखाया जाए, अन्यथा विचारशील और समझदार चर्चावान लोग हो जाएंगे तो उन पर हावी होना और अपनी मनमानी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। दोनों ही तरीकों से बराबर ये कोशिश की गई कि आदमी की विचार करने की शैली गिरा दी जाए, घटा दी जाए। ये यही कारण था कि हम 1000 वर्षों तक गुलाम होकर के रहे। वजह क्या थी? 1500 मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर आए और 1000 वर्ष तक इस बुरी तरीके से हुकूमत हमारे ऊपर करते रहे, ऐसे नृशंस अत्याचार करते रहे जैसे कि दुनिया की तवारीख में कभी कहीं दिखाई नहीं पाते। लेकिन हम बुजदिलों की तरीके से, कायलों की तरीके से, मरे हुए लोगों की तरीके से, इस तरीके से उनके अत्याचारों को सहन करते रहे कि हम जरा भी उनके सिर ऊंचा नहीं उठा सके, कुछ कर नहीं सके। ज्यादा से ज्यादा जी आया बस वो भक्ति की बात कह दी और सूरदास जी की गीत गा दिए, मीरा जी का गीत गा दिया और रामायण जी का गीत गा दिया, बस खत्म हो गया, खेल खत्म, और कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? विचार करने का स्तर आदमी का गिरा हुआ, घटिया गिरा हुआ और घटिया विचार करने का स्तर है। इसने हमको मुद्दत तक गुलाम रखा और हम अभी भी बौद्धिक गुलामी में बेतरीके से जकड़े हुए हैं। राजनीतिक गुलामी दूर हो गई तो क्या, बौद्धिक गुलामी जहाँ की तहाँ है, बौद्धिक गुलामी जहाँ की तहाँ है। अकल की दृष्टि से हम बेहद बुरी तरीके के गुलाम है। सामाजिक कुरीतियों को देखिए ना, कुछ तो करे इसमें, कोई बात है, कोई चीज है इसके बीच, कोई बात है। हमारी कुलदेवी है और कुलदेवी पे हमारे बच्चे का मुंडन होगा। कुलदेवी कहाँ रहती है? तुम्हारी 2000 मील रहती है और 2000 मील पे क्या करोगे? बच्चे का मुंडन कराने ले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? देवी पे बाल चार देंगे, क्या करेगी देवी? बालों को खाएगी, रोटी नहीं खाती है, नहीं वो बाल खाती है, बाल नहीं खिलाया तो बीवी जो बीमार कर देगी बच्चे को और हमारी मार डालेगी, देवी चुड़ैल बच्चे करेगी। इस तरह की चुड़ैलों को देवियां बना दिया गया, कुलदेवी बना दिया गया और आदमी पागल आदमी कलकत्ता से रवाना होता है और कुलदेवी वहां उसकी जैसलमेर में रहती है, 2000 रुपये फूक करके आता है और बच्चे का मुंडन करा करके आता है और क्या नाम है, समझता है कि यानी क्या उसने देवी के ऊपर एहसान कर दिया या देवी ने उसके ऊपर एहसान कर दिया, पागल कर दिया। इस तरीके से पागलों से सारा समाज भरा हुआ पड़ा है। हम बौद्धिक दृष्टि से गुलाम है और हमारी सामाजिक कुरीतियां कैसी बेहुदा कुरीतियां हैं, हमारा सारा पैसा खा जाती है, अकल खा जाती है, यानी क्या से क्या खा जाती है, हर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, मारी मारी लोग बोलते हैं यहाँ से वहां, न इस पर अकल न कोई विवेक। हम देखते हैं कि बौद्धिक दृष्टि से किस तरीके से गुलाम हमारी है। जन्म पत्रों की बात को ले लीजिए ना, एक जन्म पत्री का जंजाल ऐसा खड़ा हो गया है कि लाखों आदमी उसी से उल्लू बने भरते हैं। मंगल आ गया, राहु आ गया, चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, चंद्रमा इन्हीं के ऊपर आ गया है, ये कुमार और ये राजा साहब बैठे हुए, चंद्रमा जी इन्हीं के पीछे पीछे फिरेंगे, चंद्रमा के पास कुछ काम ही नहीं है, इन्हीं को मारेंगे, इन्हीं को दया करेंगे, इन्हीं पे लक्ष्मी बरसाएंगे, इन्हीं को हानि पहुंचाएंगे, ये जो रह गए हैं नवाब कहेंगे, चंद्रमा जी इन्हीं के पीछे फिरेंगे, बेवकूफ कहेंगे। इस तरीके से बेअकली और बेवकूफी का कोई अंत है क्या? कुछ अंत नहीं है। इसी तरीके से नैतिक चीजों के बारे में कुछ बेअकली का अंत है क्या? सामाजिक कुरीतियों को कहां तक वर्णन किया जाए, और सामाजिक कुरीतियों को वर्णन नहीं करता मैं, नैतिकता का मूल्य, नैतिकता के मूल्य के बारे में भी आदमी इस बुरी तरीके से पिछड़ता चला गया कि आदमी के जीवन न जाने कैसे ये विश्वास जम गया है कि हम अगर बेईमान होकर के जिएंगे तो मालदार हो जाएंगे, काम चोरी करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी, हम ये करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। भ्रष्ट आदमी का मन ऐसा घटिया हो गया है कि मेरे मन में ऐसा आता है कि इस सारे के सारे विचार करने की शैली को बदल दी जाए। एक और भी जमाना ऐसा आया था कि जिस जमाने में हर आदमी का विचार करने का क्रम बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच हो गया था। फिर क्या हुआ कि एक भगवान ने अवतार लिया था और परशुराम जी का अवतार था, और परशुराम जी के अवतार ने एक कुल्हाड़ा हाथ में लिया और कुल्हाड़े से आदमी के सिर काट डाले और सारी दुनिया के सिर काट डाले, और कई बार सिर काट डाले। एक बार में विचार करता था सिर काट डालने का क्या मतलब, आदमी का सिर काट डालने से क्या आदमी बदल जाएगा क्या, मरने के बाद भूत हो जाएगा, पलित हो जाएगा और फिर तंग करेगा वो, फिर गुरु भी मक्कारी करेगा, तो इस तरीके से मार डालने से क्या हो सकता है। लेकिन सिर और दिमागों को बदल डालने की बात मेरी समझ में आई कि अलंकारिक रूप से परशुराम भगवान का जो अवतार हुआ था उसके पीछे यही उद्देश्य छिपा हुआ पड़ा था कि लोगों की अकल और लोगों की समझ को बदल दिया जाए। लोगों की अकल और समझ को हम बदल दें तो आदमी की 99% समस्या अपने आप हल हो जाती है, समस्या कुछ है ही नहीं। जितनी भी समस्या है सब उसकी बेअकली की पैदा की हुई समस्या है। संतान नहीं होती है, संतान नहीं होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। संतान नहीं है तो आप अकेले मियां बीवी दो आदमी रहिए और अपने बाल बचा हुआ पैसा समाज के लिए लगाइए, खुशहाली से रहिए, शेयर कीजिए, बच्चे की पालन करने की जिम्मेदारी नहीं है, रोले चिल्लाने की जिम्मेदारी नहीं है, दवादारू की जिम्मेदारी नहीं है, बताइए इसमें क्या अच्छी बात है। नहीं सर हमारे बच्चा नहीं होता, दुखी दुखी है हम तो बड़ा, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो अच्छा है और हमारे बच्चे हो जाए तो अच्छा है। इस तरीके से बेअकली और बेवकूफी हमारे रोम रोम में इस बुरी तरीके से आ गई है कि मनुष्य क्या कहूँ मैं, इसको जानवर ही कह सकता हूँ, ऐसा जानवर आदमी हो गया है। और जानवर को समझदारी सिखाई जानी चाहिए। इसके लिए दूसरी चीज है जिसको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं और जिसको हम आर्थिक आवश्यकताएं कहते हैं, और पहाड़ की बराबर भी जुटा करके रख दी जाए तो अभी आदमी का रक्ति भर भी भला नहीं हो सकता। हम देखते हैं गरीब आदमी जितनी ज्यादा दुखी है उससे भी ज्यादा हजार गुणी परेशानी में और उलझनों में और कलेश में पड़े हुए ये अमीर आदमी है, क्योंकि तो उनके पास विचार करने की कोई शैली नहीं। अगर उनके पास कोई विचार रहा होता तो इतना अपार धन जो उनके पास पड़ा हुआ है यानी किस काम में लगा दिया होता, और उसके इस काम के द्वारा यानी समाज में क्या व्यवस्था उत्पन्न हो गई होती, यानी समाज का कैसा कायाकल्प हुआ होता। लेकिन बेटे को पोते को जमीन में जेवर हर पैसे को इस तरीके से तरह करते चले जा रहे हैं। आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं, आदमी के पास कोई दिशा नहीं है। हमारे पास विद्या है तो हम करें क्या, इसका पैसा है तो हम करें क्या, समाज के सामने समस्या इनका हल किस तरीके से करें, कुछ समझ में नहीं आता। और ऐसी बेअकली की अवस्था को दूर करने के लिए ये आवश्यकता अनुभव की गई इस बात की, लोगों को समझदारी सिखाई जाए। और समझदारी केवल ज्योमेट्रिकल भूगोल को नहीं कहते, समझदारी उसे कहते हैं जिसके आधार पर सही चिंतन करने के बाद में आदमी व्यक्तिगत जीवन की समस्या, सामाजिक समस्या और अपने युग की समस्या को समाधान कर सके। ऐसी जानकारियों का नाम ज्ञान है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की खुद ये समझी गई कि लोगों को जो हजार वर्ष की गुलामी के बाद में आदमी का कण कण विचार करने का भ्रष्ट हो गया है और दूषित हो गया, लखत हो गया है, इसको एक तरीके से उखाड़ करके फिर फेंक दिया जाए और सोचने के नए तरीके लोगों के दिमागों में स्थापित किए जाए कि विवेकशीलता के आधार पर क्या बात सोची जानी चाहिए और क्या बात नहीं सोची जानी चाहिए, और क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, और क्या दिशा गलत है और क्या दिशा सही है, ये सब शिक्षण किया जाए। और ये शिक्षण करना मानव जाति की और समाज की सबसे बड़ी सेवा है। युग निर्माण योजना ने अपने युग परिवर्तन के कार्यक्रम में पहला स्थान यही दिया, और हमने ये कोशिश की है कि इस तरह के विचार, इस तरह के विचारों की एक धारा और उसकी पद्धति और संहिता का निर्माण किया जाए जो मनुष्य को गलत सोचने से विरत करके सही सोचने के लिए मार्गदर्शन कर सके। ऐसा साहित्य कहीं नहीं, मैंने ढेरों पुस्तकें पढ़ी जो आदमी को और भी उलझन में डाल देती हैं, बजाय इसके कि कुछ कुछ सही सोचने का तरीका सिखाएं। सही सोचने के तरीका सिखाने के लिए युग निर्माण योजना ने ऐसा साहित्य, ऐसी विज्ञप्तियां, ऐसे ट्रैक्ट कम से कम मूल्य पर छापे जिससे जिससे पढ़ने के बाद में आदमी को स्वतंत्र चिंतन की दिशा मिले और आदमी को ये प्रकाश मिले कि हमारी सोचने का सही तरीका क्या है और समाज की समस्याओं का वास्तविक स्वरूप क्या है और व्यक्ति की उलझनों का वास्तविक कारण क्या है, उनका समाधान किस तरीके से किया जा सकता है। अगर ये राह मिल जाए, बीमारियों का निदान हो जाए कि जो समाज में फैली हुई विकृतियां उनका एकमात्र कारण मनुष्य का गलत सोचना है, अगर गलत सोचने की बात को आदमी जान ले और सही सोचना शुरू कर दे, मजा आ जाए। और ये मनुष्य जाति के सामने साधन उत्पन्न करने के लिए युग निर्माण योजना ने एक प्रयास प्रारंभ किया और वैसे साहित्य का निर्माण किया और वैसी विचारधारा का निर्माण किया। ये इस युग की महती सेवा है कि आदमी को क्रमबद्ध रूप से सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, बौद्धिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में स्वतंत्र चिंतन करना कैसे सिखाया जाए, ये प्रयास अन्यत्र शीर्ण हुआ था और आज अपनी इस संस्था के द्वारा प्रारंभ हुआ है। उसके द्वारा कितना साहित्य लिखा गया और कितना विचारों का एक समूह इकट्ठा किया गया, इसका मूल्यांकन आज की परिस्थिति में नहीं हो सकता। इसका मूल्यांकन बहुत दिन पीछे होगा जबकि लोग ये समझेंगे कि एक गलत दिशा में जाने वाले जन समूह को सही दिशा में हिलाने के लिए जो मोड़ दिया गया, वो मोड़ को देने का श्रेय किसका है और वो किसने ऐसा दिया मोड़। ये मोड़ मानव जाति की महती सेवा है और ऐतिहासिक सेवा है। अपना ज्ञान अपने ज्ञान के माध्यम से युग निर्माण योजना संबंध और संपर्क रखने वालों से ये प्रार्थना की गई है कि उन लोगों को अपने समय का एक अंश और अपने धन का एक अंश निकालना चाहिए और इस बात के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के विचार करने के क्रम किस तरीके से बदले जाए, सुधारे जाए। ये समय और धन की आवश्यक शर्त लगाई गई है। ये प्रयत्न ये किया गया है कि हर इस संगठन और इस मिशन से प्यार रखने वाला उसकी स्वच्छता के शुल्क के रूप में 1 घंटा समय दिया करे और कम से कम 10 पैसे तो दिया करे। 10 पैसे कोई बड़ी रकम नहीं होती है। एक प्याला चाय 25 पैसे को आता है और एक प्याला चाय की कीमत 10 पैसा होती है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है अगर उसके मन में इस बात की महत्ता समा जाए तब। और महत्ता समाया नहीं तो एक कानी कौड़ी भी भालूम 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 पड़ती है और शराब पीने में, सिनेमा देखने में 15 रुपया खर्च करके आता है। अच्छे काम के लिए कहा जाए तो चमनी में प्राण निकल जाता है। जिस चीज का आदमी मूल्य नहीं समझता उसके लिए जरा भी खर्च नहीं कर पाता, लेकिन अगर आदमी मूल्य समझता हो तो आदमी एक रोटी का आधी रोटी का टुकड़ा आसानी से खर्च कर सकता है। एक रोटी 20 पैसे की आती है और आधी रोटी हम कुत्ते को रोज फेंक देते हैं और आधी रोटी को फेंक देना कौन बड़ी बात है, कोई मुश्किल बात है क्या? अगर आदमी की समझ में आ जाए कि ज्ञान नाम की भी कोई दुनिया में चीज होती है और ज्ञान की भी कोई उपयोगिता है, ज्ञान का भी समाज में कोई मूल्य है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो कोशिश समझाने की ये की है ज्ञान इस जमाने में जितना ज्यादा आवश्यक है उतना ज्यादा कभी भी आवश्यक नहीं रहा। कम से कम पुराने जमाने में 50% विक्रिया थी, 20% बौद्धिक भ्रम था, लेकिन आज तो हमारी अकल 100% विकृत हो गई है और इसमें कहीं भी कोई ऐसा नाम रखने को जगह नहीं मालूम पड़ती। किसी आदमी के दिमाग को तोड़ा जाए, उसको विचार किया जाए, उसको खोल के पाया जाए तो ये मालूम पड़ेगा इसका 80% 90% दिमाग पागलों जैसा है और विकृत जैसा है। इसमें सही सोचने की शैली और मात्रा जरा भी नहीं है। इसीलिए हमको घोर प्रयत्न करना पड़ेगा और ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि हमें से हर आदमी 1 घंटा समय लगाए उस साहित्य को दूसरे लोगों को पढ़ाने और सुनाने और समझाने के लिए, स्वयं अपने आप को पढ़ने और सुनने और समझने के लिए। साथ साथ में 10 नया पैसे की जो बात की गई है वो रकम बहुत छोटी है, उससे भी कुछ काम कर सकता है। बंदूक किसी के पास और बारूद न हो, कारतूस न हो तो क्या काम चलेगा। हमारे घरों में घरेलू पुस्तकालय होना चाहिए जो बहुत बड़ी संपत्ति के बराबर है। किसी घर में जेवर है कि नहीं, गाय भैंस है कि नहीं, मकान है कि नहीं, तस्वीर है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, ये बहुत पीछे की बात है। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि इसको बौद्धिक खुराक पूरा करने के लिए हमारे घर में चौका है कि नहीं। इस घर में चौका न हो, रोटी का इंतजाम न हो, आटा न हो, दाल न हो, कैसा घर, उसके आदमी जियेंगे कैसे। और जिस तरीके से शरीर की भूख होती है उस तरीके से मन की भी भूख होती है और आत्मा की भी भूख होती है। और मन और आत्मा की भूख को बुझाने के लिए जहाँ रसोड़ा न हो, चौका न हो, जाना चाहिए तो भूतों का घर है। प्रत्येक घर में छोटी लाइब्रेरी होनी ही चाहिए। ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए कि जिससे घर के बच्चों को और बुढ़िया को और बुढ़ों को और भाई और बहनों को और पढ़ों को और लिखों को या तो पढ़ाया जा सके या अथवा सुनाया जा सके। उनके बौद्धिक परिष्कार करने के लिए कुछ साधन सामग्री तो होनी चाहिए। और साधन सामग्री के बिना उनको क्या सिखाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, क्या सुनाया जाए। इस तरीके से उस साधन सामग्री को घर की एक संपदा के रूप में, एक तिजोरी के रूप में, एक जेवर के रूप में, एक अंगूठी के रूप में घर में रखा जाना चाहिए और वो धन प्रत्येक घर में खर्च किया जाना चाहिए जिसको न्यूनतम मात्रा 10 नया पैसा का है। प्रत्न निर्माण योजना ने इस बात का किया है कि इस तरह का साहित्य लिखा जाए और इस तरह का साहित्य तैयार किया जाए, ऐसी पत्र पत्रिकाएं निकाली जाए जो जो इस युग की बौद्धिक भूख को बुझाने में समर्थ हो, और ऐसी ही ऐसी साहित्य को प्रत्येक आदमी अपने घर में रखे, उसके लिए 10 नया पैसा खर्च करे। ये 10 नया पैसा चिड़ियाओं को चारा चुगाने के लिए नहीं है, और गरुओं को घास खिलाने के लिए नहीं है, हवन में आरतियां देने के लिए नहीं है, और मंदिर पर प्रसाद चढ़ाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक ही काम के लिए 10 पैसा मांगा गया है कि इसको जाने के लिए खर्च किया जाए, अर्थात उस तरह का साहित्य अपने घर में रखा जाए, अर्थात एक घरेलू लाइब्रेरी स्थापित की जाए, और घरेलू लाइब्रेरी के द्वारा अपना, स्वयं का, अपने कुटुंब का और अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का बौद्धिक परिमार्जन करने के लिए एक क्रम बनाया जाए। समय का खर्च करने के लिए भी बात इसीलिए की गई है कि अगर हम केवल साहित्य रख दें और पुस्तकालय खोल दें और घर में धर दें या किसी लाइब्रेरी में रख दें, कुछ बनने वाला नहीं। मनुष्य की आज की आत्मिक भूख मर चुकी है, उस मरी हुई भूख को जगाने के लिए केवल साहित्य को रख देना या बांट देना काफी नहीं है, बल्कि उसकी इच्छा को जगाना। हमने देखा है कि उपन्यास पढ़ने वाले और गंदी किताबें पढ़ने वाले ढेरों हैं, लाइब्रेरियों में जाते हैं और पैसे देते हैं और किताबें से खरीदते हैं और नावल खरीदते हैं और गंदी किताबें खरीदते हैं और पैसा खर्च करते हैं, और अच्छी किताब देने के लिए कहा जाए तो मुंह मोड़ लेते हैं, कहते हैं फुर्सत नहीं है, और कहते हैं हम तो अच्छी नहीं लिखती और हमारे पास समय नहीं है। जब वजह एक ही है, जीवन जैसा महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके ऊपर कोई इच्छा उनकी नहीं है और इच्छा सो गई है, जीवन के स्वरूप को भूल गए और जीवन की आवश्यकताओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। लोगों की मनस्थिति के अनुसार लोगों का पहला काम पुस्तक पढ़ाना नहीं है, बल्कि पहला काम उसकी उस रुचि को जागृत करना है, और ये रुचि को जागृत करना किसी एक जगह किताबों का गट्ठा रख देने से क्या काम बनने वाला है। घर घर में जाना पड़ेगा, और विचारों की उपयोगिता, विचारों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव, और विचारों के आकार का वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव के बारे में बहुत कुछ हमको समझाना और सिखाना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि आदमी की समझ में ये आ जाए कि विचारों का भी कोई मूल्य होता है, और विचार भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी आंतरिक और बाह्य जीवन की समस्या को समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। किसी प्रकार से इतनी बात समझ आ जाए, इसके लिए घर घर जाना पड़ेगा और बहस करनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा और रुचि पैदा करनी पड़ेगी। वोटरों से वोट मांगने के लिए जिस तरीके से चालाकियां इस्तेमाल की जाती हैं, खुशामदें की जाती हैं, हमको उसी चालाकी और खुशामद के साथ साथ में घर घर जिन जिन के पास जाना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो लोक रुचि को नहीं जगाया जा सकता, और लोक रुचि नहीं जगाई जा सकती तो साहित्य का क्या कीमत, लाइब्रेरी की क्या कीमत, कुछ कीमत नहीं है, वो कूड़े की बराबर है, छापते छाप के रखते चले जाइए। या कोई आदमी खरीद लाए, एक लाइब्रेरी खोल दे, कोने में डाल दे, बस दीमक खा जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, क्या बनने वाला है। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोक रुचि ज्ञान की ओर से अस्त व्यस्त हो गई है, उसको हम किस तरीके से जगाए। इसके लिए झोला पुस्तकालय चलाने की बात कही गई है, 10 नया पैसा और 1 घंटा समय देने की बात की गई है। हम कहीं भी जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, रेलगाड़ी में जाएं, सफर में जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, और एक छोटा बैग रखें और उसमें से 5-25 किताबें जो बड़ी उपयोगी हैं और बौद्धिक क्रांति के लिए मार्गदर्शन करती हैं, उनको हम साथ लेकर के जाएं, और जो कोई भी आदमी से हमारी बातचीत हो, जहाँ कहीं भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, अपनी दाई बाई बात करके और थोड़ा सा चीज की जागृत करके और थोड़े से उसके लाभ और महात्म बता करके एक किताब चुपके से खिसका दिया जाए, पढ़ने के लिए कहा जाए। किताब पढ़ने के लायक समय न हो, थोड़ा वक्त हो तो विज्ञप्तियां हैं छोटी छोटी, उनको पढ़ने के लिए कहा जाए और उनको वापस लिया जाए। लोगों को पढ़ने के लिए देना, वापस लेना, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ठीक है, लेकिन इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो बहुत कम है। अधिकांश लोग बिना पढ़े ही होते हैं। बिना पढ़े लोगों को जहाँ भी मौका मिल जाए वहाँ इकट्ठा कर लेना चाहिए, चाहे यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अगर आपके पास 1-2 मिनट का 5 मिनट का वक्त हो तो मैं एक बात आपको सुना दूँ क्या। अच्छा बोले, अच्छा सुनाइए, बस पहले की विज्ञप्ति सुना दीजिए, 10 मिनट खत्म हो जाती है, मजेदार है, वहाँ सुना दीजिए, यहाँ सुना दीजिए, अपने घर में सुना दीजिए, रेलगाड़ी में सुना दीजिए, मोटर बस में सुना दीजिए। इस तरीके से बिना पढ़ा को सुनाई जा सकती है, पढ़ा को पढ़ाई जा सकती है। बहरहाल इस विचारधारा को हमको, हम में से हर आदमी को मिशनरी स्पिरिट के द्वारा फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और भी बात मैंने कही है और ये बात कही है कि ज्ञान मंदिर हर जगह स्थापित किए जाने चाहिए। ज्ञान मंदिर अर्थात चल पुस्तकालय। चल पुस्तकालय आज की सबसे बड़ी महत्व की आवश्यकता है। पुस्तकालय खोलने को मैं आप ज्यादा महत्व नहीं देता। पुस्तकालय को आदमी खोल ले और किताबें मंगाए लगे तो पढ़ने वाले सब बेवकूफ ही किताबें पढ़ेंगे, बेवकूफ ही अखबार पढ़ेंगे, पत्रिका पढ़ेंगे, अच्छी किताबें कोई नहीं छुएगा। हमको लोक रुचि जगाने के लिए जिस तरीके से चाय पिलाने वाले लोग और चाय का प्रचार करने वाले लोग घर घर जाते थे और फोकट में चाय पिलाते थे और एक पैसे का चाय का पैकेट बेचते थे और चाय की प्रशंसा करते थे, उस चाय वालों के तरीके से हमको ठीक वही काम करना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। घर घर हमको जाना चाहिए। झोला पुस्तकालय के माध्यम से हाँ वो भी एक तरीका है। उससे भी अच्छा तरीका यह है कि ढकेल गाड़ी बना ली जाए, चल पुस्तकालय बना दिया जाए, चल देव मंदिर बना दिया जाए। पहले लोग यात्रा करते थे और भगवान के घर पर जाते थे, और भगवान की यात्रा करनी चाहिए और लोगों के घरों पर जानी चाहिए। मरीज जब अच्छा था तो अस्पताल जाता था और डॉक्टर से कहता था नब्ज देखिए, लेकिन जब मरीज की का बुरा हाल हो जाता है और जब मरीज चलने लायक नहीं होता तो डॉक्टर को ही जाना पड़ता है और डॉक्टर को ही नब्ज देखनी पड़ती है और डॉक्टर को ही चारपाई पर के सामने खड़ा रहना पड़ता है, मरीज सोया करता है, ज्यादा खराब हालत हो जाती है। तब आज समाज की उसी तरह की खराब हालत है कि वो अस्पताल जाने की स्थिति में नहीं है और डॉक्टर से प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं है। आज तो वो चारपाई पर लंगन की बीमारी की तरीके से पड़ा हुआ है। हम समाज से भी डॉक्टरों को और हम लोक सेवियों को ज्ञान मंदिर में उनको बुलाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनको ज्ञान मंदिर उनके घर पर पहुंचाना चाहिए। दवा अस्पताल लेने आएंगे ये नहीं हो सकता। अब तो दवा को उनके मुंह में डालने के लिए चम्मच समेत जाना पड़ेगा और उनके नसों में सुई लगा के उनके ग्लूकोज उनके नसों में चढ़ाना पड़ेगा। आज ये स्थिति है हमारे समाज की और मानव जीवन की। इसके लिए चल पुस्तकालय के लिए बहुत अधिक महत्व दिया गया है और ये कहा गया है हर गांव में एक ढकेल गाड़ी बना ली जाए, 300-200 रुपए की अच्छी गाड़ी बन जाती है, चार पहियों की और ठोस पहियों की, उसको कवर कर दिया जाए या उनको अच्छी ढंग से बना लिया जाए तो कम पैसे तो खुला भी रखा जाए। बहरहाल ढकेल में रख करके जो लिबर साहित्य में पहले विज्ञप्ति आती है, इसके बाद में ट्रक आते हैं, पहले उस ढकेल गाड़ी को लेकर के घर घर जाया जाए और उसको पुस्तकालय कहा जाए, बिक्री केंद्र है। पहले उसको हर आदमी को एक एक विज्ञप्ति पढ़ने दी जाए जो विचारशील लोग ने, जब वो उसमें रुचि लेने लगे तो फिर उनको ट्रक दिया जाए। अगर वो विज्ञप्ति ले लिया फेंक दिया और दूसरे दिन वापस नहीं की तो जानना चाहिए कि अभी इसी लाए थे कि अभी विज्ञप्तियों से इसको ट्राई किया जाए। विज्ञप्तियों से कई दिन तक ट्राई करते रहना चाहिए और ये मालूम पड़ा कि हाँ थोड़ी रुचि जागृत की तब किताब देनी चाहिए। शुरू में ही किताब दे दी तो पढ़ नहीं पाएगा, बोर हो जाएगा, रख देगा, फेंक देगा, फिर आप शिकायत करेंगे कि हमारी किताब को पढ़ा नहीं, देखा नहीं, फेंक दिया। इस तरीके से विज्ञप्तियों के आधार पर रुचि जमाना, थोड़ी बातचीत करना, उसका महत्व बताना, लोगों को समझाना कि इस विज्ञप्ति को पढ़ के अमुक आदमी के जीवन में ये हेर फेर हो गया और ये लाभ उठाया, आप भी पढ़िए, हमको ये पसंद आया और हमको ये लाभ हुआ, आप भी पढ़िए। इस तरह की प्रशंसा और महात्म बताने के बाद ही आदमी की थोड़ी रुचि को जागृत होना संभव है। इस तरीके से ढकेल गाड़ियां चल पुस्तकालय सामूहिक रूप से चलाई जानी चाहिए अथवा व्यक्तिगत रूप से। बिक्री भी हो जाए थोड़ी सी किताबों की तो अच्छी बात है, क्या अर्ज की बात है, उसमें से बिक्री हो जाती है तो आदमी अपने घर पर किताब रखेगा, घर पर किताब रखेगा, और अगर नहीं बिक्री होती है तो अपना पढ़ाने का तो काम से चल ही रहा है, बिक्री हो जाती है तो अच्छी बात है और उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए कि लोग खरीदें। लेकिन खरीदना ही अपना उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य अपना पुस्तकालय है। बिक्री कर्म चलाना नहीं है, दुकान चलाना नहीं है और कोई फेरी लगाना नहीं है, धंधा करना नहीं है, बल्कि लोगों को ज्ञान की धाराओं को वितरण करना है। चल पुस्तकालय, झोला पुस्तकालय, 10 नया पैसा अपनी घरेलू लाइब्रेरी के लिए निकालना और 1 घंटा समय लोक मंगल के लिए, ज्ञान के प्रसार करने के लिए काम करना, यह आज की हमारी कार्यशैली है। जरा सी है, छोटी सी है, लेकिन हम ये देखते हैं इस प्रयास के द्वारा अगर समाज में नया जीवन लाया जा सका, लोगों को सोचने का तरीका बदला जा सका, लोगों के अंदर पैदा किया जा सका, लोगों के अंदर उत्साह उल्लास पैदा किया जा सका और लोगों को सत्संग चिंतन की दिशा दी जा सके, तो निश्चित रूप से मनुष्य जो आज दिखाई पड़ता है कल नहीं रहेगा और जो आज समाज दिखाई पड़ता है वो कल नहीं रहेगा, और आज जो विकृतियां सारे समाज को भ्रष्ट किए हुए रही है वो कल नहीं रहेंगी, जरूर जमाना बदल जाएगा। और जमाना बदलने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ज्ञान की है, और ये चिंगारी और ये मसाल जलाए रखी जा सके तो हम न केवल भारतवर्ष की, न केवल मानव जाति की, बल्कि समस्त विश्व की और समस्त प्राणी मात्र की सारा सारी निरज चेतन जगत की एक महति सेवा कर सकते हैं। ज्ञान में हमारा विश्व कल्याण का यज्ञ है, उसको केवल भौतिक यज्ञ से हजार गुना लाख गुना बढ़ा के माना जाना चाहिए और हर विचारशील को ज्ञाने के लिए अपने हिस्से का कर्तव्य पालन करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। समाप्त। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि।